हरे कृष्णा जय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। और आगे आ जाइए सब लोग, थोड़ा नहीं पूरा आगे आइए। हरे कृष्णा, आप और आगे आइए, सब लोग आगे आइए। जिनको आवाज साफ नहीं सुनाई पड़ रही है आगे आ जाएं। अभी आवाज आ रही है सबको? साफ सुनाई पड़ रहा है? हैं? आप लोगों में से कितने लोग हैं?
हरि बोल।
आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूं? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ बिल्कुल नए हैं। हैं? आप लोग नए हैं? तो देखिए, ये कार्तिक का जो महीना चल रहा है, इसके महात्म में कुछ बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। एक कथा है सत्यभामा, भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, वो कैसे पिछले जन्म में उन्होंने कार्तिक का व्रत किया था, जिससे कि वो अगले जन्म में सत्यभामा भगवान की पत्नी बनी, है ना? कितने लोगों को ये कथा पता है? कितने लोगों को ये कथा मालूम है? बहुत कम लोगों को मालूम है। तो मैं तो कुछ दूसरी कथा सुनाना चाहता था, लेकिन जिनके पास मोबाइल है मोबाइल बंद कर दीजिए, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। तो मैं कार्तिक महात्मा की कुछ और भी कथा सुनाना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सत्यभामा की कथा बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मेरा विचार है कि मैं सत्यभामा की कथा सुनाऊं कि पिछले जन्म में उन्होंने कार्तिक का जो व्रत किया था, उससे कैसे वो भगवान की पत्नी बनी सत्यभामा। ठीक है, आप लोग सुनेंगे ध्यान से? हाथ उठाइए सब लोग, ध्यान से सुनेंगे? ध्यान से सुनिए। अच्छा सुनिए बड़े ध्यान से, ये जो है पद्म पुराण की कथा है। सूत गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं कि नारद जी आए रेंद्र, जब नारद जी आए भगवान कृष्ण से और बातचीत करके चले गए, तो हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म देने वाले मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरे जैसी कन्या को जन्म दिया। सब ठीक है? मेरे माता पिता धन्य हो गए जिन्होंने मेरे जैसी कन्या को जन्म दिया, कि 16,000 रानियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी हूं। यो माम त्रैलोक सुभगम जनयामा चतुर्ध्रुवम षोडश स्त्री सहस्त्राणाम वल्लभाहम यतस्तव। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वो कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते हैं। है? कौन कह रहे हैं? सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? कौन कह रहे हैं? सत्यभामा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। सुनिए ध्यान से, आप लोगों को सुना रहा हूं मैं, है? किसी और को नहीं सुना रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। सुनिए ध्यान से, आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में है। मैं इस समय त्रैलोक के अधीश भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी हूं। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। कौन कह रहे हैं? सत्यभामा कह रही हैं भगवान कृष्ण से। क्या कह रही हैं? आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। त्रैलोक्याधिपतेश्चाहं श्रीपते रतिवल्लभाम् अतो हम प्रष्टुमिच्छामि किंचित् त्वां मधुसूदन। यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग है तो विस्तार से कहिए, जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं। और आपका और मेरा बिछुए कल्प पर्यंत भी ना हो, ऐसा उपाय बताइए। कैसा उपाय बताइए? आपका और मेरा बिछू है कल्प पर्यंत भी ना हो। तो सूत जी कहते हैं, सत्यभामा का ये वचन सुनकर मंद मंद मुस्काते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के नीचे आ गए। कौन सा कल्प वृक्ष? जो सत्यभामा के आंगन में लगा हुआ है, एकांत में आ गए भगवान कृष्ण। और सेवकों को बाहर रोक दिया है? क्यों? एकांत में सेवकों को बाहर रोक दिया कि किसी को भी यहाँ नहीं आने देना, तुम लोग भी नहीं आना यहाँ पर और किसी को नहीं आने देना। और हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए श्री कृष्णचंद्र जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिया हमको अन्य रानियां नहीं है। मेरी 16,000 स्त्रियों में तो मुझे प्राणों से भी प्रिया हो। नमे सुधा प्रियतमा काजदन्यानितं विनी षोडश स्त्री सहस्राणाम प्रिया प्राण समाहसी। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं और इंद्र से भी विरोध किया। तुम्हारे लिए हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ आश्चर्यजनक बातें बताता हूं, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज ना देने योग्य नहीं है और कोई काम ना करने लायक नहीं है और कोई बात ना बताने लायक नहीं है, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं ये कैसे होगा? अदेयम अपि वा कार्यम अकथ्यम अपि यत् पुनः तत्करोमि कथम प्रश्नम कथयामि न तत्प्रिये। हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो, मैं बताऊंगा। कौन बोले? भगवान कृष्ण बोले। किससे बोले? सत्यभामा से बोले। देखिए, सत्यभामा की एकांत में बातें हो रही हैं और हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग जो है गुप्त रूप में सुन रहे हैं इन बातों को, गुप्त वार्ता। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान व्रत तथा तप किया था जिससे मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ और आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ में बैठकर आपके साथ घूमती हूं। कौन कह रहे हैं? सत्यभामा कह रही हैं, मेरा इतना सौभाग्य कैसे हुआ, आपके साथ गरुड़ में बैठकर के घूमती हूं। मैं आपसे पूछती हूं कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था। इंद्रादि देवता वासम आगमन्त्या तुया सह अतस्त्वां परिपृच्छामि किं कृतं तु मया शुभम। मैं पूर्व जन्म में किस स्वभाव की थी और किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया, तो एकाग्र मन होकर सुनो। ये पंखा बंद कर सकते हैं? पंखे की जरूरत है क्या? हाँ, ये पंखा जो है अगर आवश्यकता नहीं तो बंद कर दीजिए, अगर गर्मी लगे तो फिर पंखा चला सकते हैं। हाँ क्या सुना, मैं क्या बता रहा था? हाँ कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? सत्यभामा कह रहे हैं। सत्यभामा के बाद किसी और ने कुछ कहा है? है? भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? नहीं सुना, फिर से सुनो ध्यान से। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था, सो एकाग्र मन होकर सुनो। सुन रहे सब लोग? एकाग्र मन होकर सुनो। सुनो स्वयं मनाकांते यथा तुम पूर्व जन्मनि भगवान तरे चमशीला काचा हम कस्य कन्यकाम। उस समय तुमने जो व्रत किया था, जो पुण्य किया था, जिसकी तुम पुत्री रही, सो सब मैं कहता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में, माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाले देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य अतिथियों की सेवा करते थे, हवन करते थे, बड़े तेजस्वी थे। बुढ़ापे में उनको एक गुणवती नाम की पुत्री हुई। किसको? देव शर्मा, देव शर्मा, हाँ देव शर्मा, देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को एक पुत्री हुई। उसका नाम क्या है? गुणवती। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। हाँ? गुणवती का विवाह हुआ किसके साथ? चंद्र शर्मा, चंद्र शर्मा से विवाह कर दिया। चंद्र शर्मा देव शर्मा के कौन है? शिष्य है। अपने शिष्य के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। अब एक ही घर में रहते हैं, तीन लोग हैं, पिता है और पुत्री है और दामाद, एक साथ रहते हैं। एक समय वे दोनों कुसा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहां एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग शिथिल हो गए और भागने की शक्ति भी समाप्त हो गई। ताव भो राक्षसम घोरम आयांतम तम अपश्यताम भय बेवल सर्वांगा वसमर्थ पलाये तुम। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला, तो मरण के उपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से और धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको वैकुंठ ले गए। दोनों वैकुंठ चले गए। कौन दोनों? हाँ ससुर दामाद। है? ससुर का नाम क्या है? देव शर्मा, और दामाद का नाम है चंद्र शर्मा। दोनों वैकुंठ चले गए। निहतो रक्षसा तेन कृतांत समरूपिणा तो तत्क्षेत्र प्रभावेण धर्मशील तया पुनः। उन्होंने जीवन भर विष्णु की आराधना की थी, तो जब वे मेरे वैकुंठ में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, मेरे जैसे रूपवान और दिव्य चंदन और माला धारण किए हुए थे, वे वहां मेरे ही पास रहने लगे। मेरे पास? किसके पास? भगवान के पास रहने लगे। तदस्य तो मन भवनाधिवासिनो विमान यानो रविवर्षसा वभो मत्तुल्य रूपो मम सन्निधान गो दिव्यांगना चंदन योग भोगिनो। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता और पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखी होकर विलाप करने लगी। कौन विलाप कर रही है? गुणवती, क्योंकि अब उसका संसार में कोई नहीं रहा। ततो गुणवती स्तुत्वा राक्षसा नेता वभौम पितृभर्त्री पितृभर्तृज दुखार्ता करुणम पर्य देवयन। वो बोली हाय प्राणनाथ, हाँ पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए, अब मैं आप लोगों के बिना असहाय नहीं हो गई, हाय मैं क्या करूं। हा नाथ हा पितस्त्यक्त्वा गच्छया क्वा मया विना बाला हम किम करोम्यद्य हेनाथा भवतो विना। अब भोजन वस्त्र से कौन मेरा पालन पोषण करेगा, कोई कार्य करने का मुझे सहूर नहीं है, अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं, हाय मैं ऐसी घृणित हो गई, मेरे पर देव का कोप हुआ है, अब मैं किस तरह जीऊंगी, मैं बड़ी पापनी हूं। कोयास्यामी कोतिष्ठामी किम करोमि यथा घृणम विधात्रा हा हतास्मद्य कथम जीवामि बालिशाम। श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि पक्षी चील पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर केले के वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गई। केले का पेड़ गिरता है तो नीचे से जड़ से गिर जाता है ना, दूसरे पेड़ गिरते हैं तो नीचे का ठूंट बचा रहता है, केले का पेड़ गिरता है तो नीचे से पूरा गिर जाता है। केले के पेड़ की तरह गिर गई कौन, गुणवती। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर विलाप कर दुख से विकल हुई, शोक समुद्र में डूब गई। शरणम कम प्रमाम प्रणाम अद्य यो मे दुखम प्रमार्जति पबाद भूमो विकला रंभा वाते हता यथा चरादा स्वास सा भूयो विलप्य करणम बहो निमग्ना शोक जल दो दुखिता समय वर्तत। तब अपने घर की अनेक वस्तुएं बेच करके उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। कुछ पैसा नहीं था पास में तो घर का सामान ही बेचा उसने। तब विष्णु भगवान की भक्ति में लगकर शुद्ध शांत भाव से इंद्रियों को बस में करके उसी पुरी में रहने लगी। कौन सी पुरी है वो, मायापुरी है? तो जहां तक मेरा अनुमान है वो मायापुरी है, मायापुर धाम, इस समय हम लोग मायापुर बोलते हैं तो ये वही स्थान है। मायापुर आप लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तस्मिन्ने पुरे चक्रे वासम संसृति जीवनी विष्णु भक्ति परा शांता सत्य शौचा जितेन्द्रिया। जन्म से मरण पर्यंत वो एकादशी और कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। देखो दो व्रत उसने जन्म से लेके मरण तक मतलब किए। दो व्रत कौन से हैं, एकादशी का व्रत और कार्तिक व्रत, और ये वैष्णवों के हैं व्रत। दूसरे व्रत होते हैं लेकिन वो वैष्णवों के नहीं होते, लेकिन ये व्रत है वैष्णवों का है। व्रतद्वयं तथा सम्यग् आजन्मे मरणात् कृतम् एकादशी व्रतम् सम्यग् सेवनम् कार्तिकस्य च। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले और मुझको अत्यंत प्रिय हैं। किसको प्रिय हैं, भगवान कृष्ण को प्रिय हैं। एतन् व्रतद्वयं कान्ते ममातीव प्रियंकरम् भुक्ति मुक्ति करम पुण्यम पुत्र संपत्ति दायकम। तो कार्तिक के महीने में सवेरे के समय जो स्नान करते हैं वे यदि बड़े से बड़े पापी हों तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। कार्तिके मासे नित्यम तुलासंते दिवाकरे प्रातस्नाश्यन्दिते मुक्ता महापातकिनोपिचा। जो लोग कार्तिक में स्नान जागरण दीपदान और तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन पालनम कार्तिके मासि कुर्वन्ती तेनरा विष्णु मूर्तयः। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। सम्मार्जनम विष्णु गृहे स्वस्तिका निवेदनम विष्णु पूजाम चये कुर्युर जीवन मुक्तास्तु ते नराम। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं वे भी देवताओं के पूज्य बन जाते हैं, देवता भी उनकी पूजा करें। 3 दिन भी अगर कार्तिक में नियम का पालन करे कोई, तब भला जिन्होंने जन्म भर व्रत किया है उनका क्या कहना। इत्थम दिन त्रयम् अपि कार्तिकेय प्रकुर्वते देवानाम् अपि ते वंद्या किं चैव जन्मतः कृतम्। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। इत्थम गुणवती सम्यक् प्रत्यग्नम् प्रतिनिहभूत नित्यम् विष्णु प्रपूजायाम् भक्त्या तन्परमानसाम्। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुर्बल और ज्वर से पीड़ित थी। सुन रहे सब लोग, अब क्या हो गया, उसका बुढ़ापा आ गया है और उसने कार्तिक व्रत नहीं छोड़ा है ना। और देखो जवानी में ही विधवा हो गई थी, तो जवानी का उसे पता नहीं चला बुढ़ापा कब आ गया है। कोई भोग इंद्रियों के भोग उसने कुछ नहीं किए है, और क्या करती रही, विष्णु का पूजन, एकादशी व्रत, कार्तिक व्रत, इसी में ही उसका पूरा जीवन है चला गया और क्या हो गई, वृद्धावस्था वृद्ध हो गई। ज्वर से पीड़ित, ज्वर समझे, बुखार, ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में वो भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। अब धीरे धीरे चल पा रही है और स्नान करने जा रही है। कुटिया थी है, गर्म पानी भी करने का मतलब उसके पास समय नहीं था या सब सुविधा नहीं थी है, तो गंगा में स्नान करी। गंगा पानी बहुत ठंडा भी है और बुखार भी है और दुर्बल है। धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। कदाचिन सारोजा साथ है कृषांगी ज्वर पीड़िता स्ना तुम गंगाम गदा कांते कथंचन चन के सदा। वो जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी। उस भीमल अवस्था में ही उसने आकाश से आते हुए विमान को देखा। अब देखो कांपने लगी है उस अवस्था में, भयभीत अवस्था में क्या देखा, आकाश से क्या रहा है, विमान आ रहा है। यावत् जलांतरगता कंपिता सीद पीड़िता तावत् सा विह्वला पश्यन् विमानम् प्राप्त मंबरा। उस विमान पर क्या देखा, 2 पार्षद हैं, वो भी विष्णु के रूप धारण करने वाले हैं। कैसे हैं, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त हैं, विष्णु रूप धारण करने वाले पार्षद हैं, गरुड़ के ध्वजा से युक्त अप्सराओं से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चमर डुलाते हुए विष्णु के पार्षद उसे वैकुंठ में ले गए। देखो कितना आश्चर्य, संघ चक्र कदा पद्मे रायुधेर उपलक्षिताम विष्णु रूप है धरा सम्यंग वेनते ध्वजांकितम आरुह्य व्योम यानम ताम अप्सरोगण सेविताम चामरेर वीज्यमानाम ताम वैकुंठम मंगलानयन। उस विमान में बैठी हुई वह अग्नि के समान लगती थी। उसने अपना शरीर छोड़ दिया और कैसा शरीर प्राप्त कर लिया, आध्यात्मिक शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया। वैकुंठ में जाने क्या है, शरीर दूसरा होता है ना, है ना, कैसा शरीर जिसमें बुढ़ापा नहीं, कभी मृत्यु नहीं, बीमारी नहीं है, बुखार नहीं है ना, ऐसा शरीर उसको प्राप्त हो गया। इस प्रकार वो कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। अथ सातन विमानस्था जलदग्निश कोपमा कार्तिक व्रत पुण्येन मत्सान्निध्यं गता भवन। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। बहुत समय के बाद मेरी मुझसे प्रार्थना की किन्होंने, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो मैं आया अपने गुणों के साथ आया, मेरे गण भी मेरे साथ आए। अथ ब्रह्मादि देवानां यदा प्रार्थनया भुवम् आगतोऽहं गणा सर्वे आयातास्तेऽपि मया सह। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं, वैकुंठ से आए। देव शर्मा ब्राह्मण जो इस जन्म में तुम्हारा पिता था, उस जन्म में सत्राजित यादव हुआ है, सत्यभामा के पिता। पिछले जन्म में गुणवती थी और गुणवती के पिता कौन थे? देव शर्मा। इस जन्म में वही सत्यभामा बनी, तो सत्यभामा के पिता वही सत्राजित हैं, तुम्हारे पिता हैं। एते हि यादवा सर्वे मनगणा एव भामिनी पिता ते देव शर्मा भूत सत्राजित अभिरो यथा। और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं और तुम वही दुखिया गुणवती है। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई हो। यश्चंद्र शर्मा सो क्रूरस तुम सा गुणवती स्वभाम कार्तिके व्रत पुण्य ने बहुमत प्रीति दायिनी। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, हाँ सुनो ध्यान से, पिछले जन्म में तुमने क्या किया था मेरे मंदिर के द्वार पर? क्या किया था? तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में मैंने कल्प वृक्ष लगाया है। हरि बोल, हरि बोल। मद्वारी यत्त्वया पूर्वं तुलसी वाटिका कृतां तस्मादयं कल्प वृक्षं तवांगणे गता शुभे। तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, मुझे दीपदान किया था कार्तिक महीने में, मुझे पूर्व जन्म में तुमने दीपदान किया था। उसी पुण्य से इस समय तुम्हारी देह में शोभा है, सुंदरता और घर में लक्ष्मी का वास। दीपदान से दो चीजें प्राप्त हुई, एक तो शरीर में सुंदरता और दूसरा घर में लक्ष्मी का वास, संपत्ति। दो चीजें किससे? दीपदान, कार्तिक में दीपदान, भगवान को दीपदान करना। कार्तिके दीपदानम चा त्वयायत्तु कृतं पुनः तंगे संस्था चा शुभा तस्मान लक्ष्मी स्थिरा भव। तुम उस समय तुमने जो व्रत आदि पति स्वरूप मुझे अर्पण किए थे, उसके फल से तुम इस जन्म मेरी भार्या हो। यच्चामृतादिकं सर्वं विष्णवे भर्तृरूपिणे निवेदितवती तस्मान् मम भार्या त्वम् आगता। तुमने मुझ विष्णु भगवान को पति भाव में क्या अर्पण किए? अपने जितने व्रत, जितने उपवास, पुण्य अर्पित किए, इससे तुम मेरी क्या बन गई हो? भार्या बन गई हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। क्या समझे? जन्म से लेकर मरण पर्यंत तुमने क्या किया? कार्तिक का व्रत किया, इससे हमारा तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। आजन्म मरणात् पूर्वं यत्कृतं कार्तिके व्रतं कदाचिदपि तेन त्वं मन वियोगं न यास्यसि। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। एवं ये कार्तिके मासी नरा व्रत परायणा मत सान्निध्यम गतास्ते भी प्रीतिदास्तम यथा मम। नाना प्रकार के यज्ञ दान व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक व्रत का 16वां हिस्सा भी नहीं होता। क्या समझे? सुनिए ध्यान से। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत और तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक व्रत का 16वां अंश भी नहीं होता। 16वां अंश का मतलब 6%, 6% भी नहीं है। कार्तिक व्रत का 6% भी नहीं है। बाकी जितने भी क्या है, यज्ञ, व्रत और तप सब। यज्ञ दान व्रत तपा कारिणो मानवा खलो कार्तिके व्रत पुण्यस्य न अपनवन्ति कलामपि। अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुन करके सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। इत्थम निशम्य भवनादि प्रदेश तदानीं प्राग्जन्म पुण्य भवे भवजात हर्षां विश्वेश्वरं त्रिभुवने के निदान भूतम कृष्णं प्रणम्य वचनं निजगाद सत्यां। तो इस तरह से हमने आपको कार्तिक महात्म्य एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? अभी हमारे पास समय है, 9 बजे समाप्त करना ना, 9 बजे। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं?
एकादशी को तो बहुत बताया,
कार्तिक मास में क्या करना है? हाँ, कौन बताएगा कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम है, कौन बताएगा? हाँ जी, है? वो हैंडमैक तो है नहीं, दीपदान है, जोर से बोलना पड़ेगा है? एक तो है दीपदान, कार्तिक के महीने में दीपदान, एक तो दीपदान का बड़ा महत्व है। हाँ, दीपदान जो है आप कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, भगवान के चित्र के सामने भी कर सकते हैं, है ना। दीपदान का इतना फल है, इतना महात्म्य है कि इसकी 3 घटनाएं मैंने कल सुनाई थी वहां गुड़गांव में, 3 घटनाएं, और तीनों घटनाएं क्या है, चुहिया की थी। कोई मदद चुहिया, ऐसे अलग 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 3 चुहिया ने जो है दीपदान किया अलग अलग मंदिर में, और वो जो है तीनों की चुहिया रानियां बनी, राजा की रानी बनी। और कैसे, चुहिया का कोई इरादा थोड़ी होता दीपदान करने का, वो मंदिर में जो है वो तो घी खाने के लिए आई या तेल पीने के लिए आई दिए का, और दिया जो है जल गया, गुस्से से जल गया दिया, तो वो भी जो है दीपदान मतलब हो गया उसका। सोचिए दीपदान का इतना फल, दीपदान का इतना फल कि चुहिया जो है उसने जो है घी खाने के लिए, वो बुझने वाला था दिया और घी खाने के लिए उसने अपना मुंह लगाया तो दिया जल गया, तो बुझता हुआ दिया भी अगर जल गया। किसी ने दीपदान किया है, वही दिया आप अगर भगवान को दिखा देते हैं 7 बार आप जो है अगर ऐसे घुमा देते हैं तो वो जो है आपका दीपदान हो गया, है ना। इतना इसका मतलब शक्ति है दीपदान, कितनी शक्ति है। और उससे क्या है कि चुहिया से वो जो है रानी बन गई, अगले जन्म में रानी बनी, मतलब सौंदर्य भी और धन संपत्ति भी। दीपदान के 2 परिणाम है, एक तो सौंदर्य और दूसरा संपत्ति, है ना। तो दीपदान का इतना परिणाम है कि ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने सब संपत्ति दान कर दे है? और दूसरा व्यक्ति केवल दीप दान करे तो दीप दान का ज्यादा फल है, ठीक है ना। हाँ, और दीप दान, हाँ दीप दान, जैसे घी घी वाला दिया जलाएं, लेकिन घी का अगर ना हो तो तेल का भी जला सकते हैं, हैं? जो भी मिले आप जला सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो जाए, है ना। और क्या है नियम कार्तिक का? है जी, स्नान सूर्योदय से पहले स्नान करना, कार्तिक में सूर्योदय से पहले स्नान करना, ये जो है कार्तिक का नियम है। है ना। और इससे भी पहले रात्रि के पिछले पहर में जागना है, इसकी चर्चा हमने कल की थी। रात्रि का पिछला प्रहर यानी अंतिम प्रहर, उसे निशांत काल बोलते हैं। 3:22 से शुरू होता है निशांत काल। तो उस समय जागना और स्नान करके मंगल आरती में भाग लेना। अपने घर में मंगल आरती कर सकते हो, या यहाँ पर मंगल आरती होती है 4:30 तो यहाँ आ सकते हो। तो ये नियम बनाना। तो दो नियम इसमें हो गए, अगर आप मंगल आरती करते हैं तो इसमें दो नियम हो गए। क्या? रात्रि के पिछले प्रहर में जागने का भी नियम हो गया और सूर्योदय से पहले स्नान करने का भी नियम हो गया, है ना। तो दो नियम तो ये हो गए। और तुलसी सिंचन करना, ये तीसरा नियम काल कार्तिक का। और चौथा नियम है ब्राह्मणों को दान करना, है ना। लेकिन ब्राह्मण जैसे लोग सोचते हैं ना कि जन्म से कोई ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता कोई, ब्राह्मण का प्रशिक्षण मिलता है। जैसे ये हरे कृष्ण आंदोलन है, यहाँ पर लोगों को ब्राह्मण का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो संस्था है हरे कृष्ण आंदोलन की, ये लोगों को ब्राह्मण बना रही है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। आजकल तो लोग यही सोचते हैं भाई जन्म से हम तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हैं, देखो मेरा जनेऊ देखो, वो जनेऊ निकालते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। तो जनेऊ 50 पैसे के जनेऊ पहने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, है ना। तो दान देने का मतलब यही है कि हरे कृष्ण आंदोलन में अगर आप दान देते हैं, है ना, तो उसका सदुपयोग होता है, भगवान की सेवा में लगता है। ब्राह्मण वही होते हैं जो दान लेते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ब्राह्मणों को दान करना ये चौथा नियम है, ठीक है ना। और पांचवा नियम क्या है? एक बार है, एक तो जो है तुलसी जल दान और ब्राह्मणों को दान, है ना, और दीप दान, तीन ये हो गए। हाँ ठीक है, चार पांच हो गए, पांच हो गए। नहीं नहीं, कार्तिक में पांच नियम रोज का, रोज के पांच नियम हैं। एक तो सूर्योदय से पहले नहीं, रात्रि के पिछले पहर में उठना, दूसरा सूर्योदय से पहले स्नान करना, और तीसरा तुलसी में जलदान करना, और चौथा दीप दान करना, और पांचवा ब्राह्मणों को दान करना।
4 बजे उठ जाए तो चल जाए।
है जी,
4 बजे उठ जाए।
हाँ, सबसे अच्छा तो यही है कि जो है आप मतलब 4:10 से पहले आप तैयार हो जाइए स्नान करके, ठीक है ना। सबसे अच्छा तो ये है। तो ये कार्तिक के जो है कुछ नियम है जिनका पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे आंदोलन में एक और भी नियम है कार्तिक में, वो क्या है? दामोदराष्टकम का पाठ करना है, और यशोदा दामोदर का विशेष रूप से ध्यान करना, दर्शन करना, चिंतन करना, क्योंकि ये दामोदर मास कहलाता है। इस महीने में भगवान ने उखल बंधन लीला करी, है ना, भगवान उखल से बांधे गए, तो उस लीला का चिंतन करना पूरे महीने, ये नियम है। क्योंकि भगवान ने उखल बंधन की जो लीला करी थी वो कार्तिक महीने के बिल्कुल बीच के दिन में करी थी। बीच के दिन क्या होता है? अमावस्या। महीने का सबसे बीच में जो दिन होता है वो कौन सा होता है? अमावस्या, दीपावली। तो उसी दिन भगवान जो है उखल से बांधे गए थे। तो बीच का जो दिन है वो पूरे महीने में जो है मतलब हमें क्या करना है? मानना है, है ना, उस लीला का चिंतन करना, उस लीला की चर्चा करना है, सुनना है। इस तरह से हमें जो है कार्तिक के नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ जी, दीप जो है मिट्टी का भी हो सकता है और धातु का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, जैसे अपनी सुविधा हो। मिट्टी का दिया भी जो है आपने जैसे दीपदान कर लिया, पानी से धो करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप फेंकना चाहें फेंक भी सकते हैं, अगर ना फेंकना चाहें तो पानी से धो करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी सुविधा है दीपदान करके। हाँ जी, प्रभात फेरी होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा नियम है कार्तिक में जो है, कुछ इस प्रकार के नियम बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी नियम बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत का पाठ हाँ आप कर सकते हैं है ना, पढ़ सकते हैं, तो नियम बना दी बनाइए है ना, गीता के एक अध्याय का पाठ करना ये नियम बना सकते हैं, अतिरिक्त हरे कृष्ण मंत्र का माला पर जप करने का नियम बना सकते हैं है ना, तो इस तरह से आप जो है कुछ नियम बना सकते हैं। इसके अलावा हमें उड़द की दाल का त्याग करना होता है कार्तिक के महीने में, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। श्री कार्तिक मृत महामहोत्सव की, श्री दीपदान महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की। हरे कृष्णा।
हरे Thank you.